दिन भर दिन रविवार तारीख 19 जुलाई मैं अशोक कुमार। पाकिस्तान ने कहा नियंत्रण रेखा पर फायरिंग उफा में मोदी और शरीफ के बीच हुई सहमति के खिलाफ। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश के बाद बाढ़, घर सड़कें सब जलमग्न।
निचली बस्तियों में पानी भर गया है, पानी निकासी की क्षमता से अधिक पानी का भराव होने के कारण सभी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है।
और बीबीसी की विशेष श्रृंखला फैला उजियारा में आज बात जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के जीवन और उनकी विरासत की।
उन्होंने 2.5 दिन के निर्जल उपवास के बाद दिव्य वस्त्र धारण किए। वे बिल्कुल एकाकी थे, कोई उनके साथ नहीं था, अपने केश लुंचित कर और अपना।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने शनिवार को एलओसी पर बगैर उकसावे के फायरिंग करके उफा समझौते का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस फायरिंग को लेकर भारत से विरोध दर्ज कराया गया है और ये कार्रवाई उफा में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच हुई सहमति के खिलाफ है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से शनिवार को नेजापीर सेक्टर में फायरिंग की गई जिसमें किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है। वहीं भारतीय सेना ने भी ईद के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होने के आरोप लगाए हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा है कि पिछले कुछ दिनों से एलओसी पर जो फायरिंग हो रही है वो निंदनीय है। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच तनाव बढ़ गया है। संघर्ष विराम की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप या ओएससीई ने इस बात की पुष्टि की है। ओएससीई के उप प्रमुख निरीक्षक अलेक्जेंडर हग ने बीबीसी से कहा कि दोनेत्स्क शहर के आसपास झड़पें हुई हैं।
We can confirm first that there was a serious increase in tension yesterday.
हम ये पुष्टि कर सकते हैं कि कल शाम और रात तनाव काफी बढ़ गया था। दोनेत्स्क शहर से पश्चिम की ओर यूक्रेन की सेना की तरफ फायरिंग की गई। यूक्रेन की सेना की तरफ से भी जवाबी फायरिंग की गई। कुछ देर गोलीबारी चली जिसे कीव, दोनेत्स्क और वियना में संबंधित प्रतिनिधियों के हस्तक्षेप से रोका गया है, जिसके बाद रात को शांति बनी रही। ये थे ओएससीई के उप प्रमुख निरीक्षक अलेक्जेंडर हक के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अल्जीरिया की सेना ने कहा है कि एक चरमपंथी हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई है और 2 सैनिक घायल हो गए हैं। अलकायदा इन इस्लामिक मगरेब ने दावा किया है कि एन डेफला प्रांत पर हमले में 14 सैनिकों की मौत हो गई है। अल्जीरियाई सेना ने इलाके को सील कर दिया है और कई चरमपंथियों को मार गिराने का दावा किया है। संवाददाताओं के मुताबिक 90 के दशक में अलकायदा इन इस्लामिक मगरेब का एक गुट अल्जीरिया के इस प्रांत में सक्रिय था और अब भी इन इलाकों में अलकायदा के लड़ाके सक्रिय हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया के 6 शक्तिशाली देशों और ईरान के बीच हुए समझौते की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ईरान इस बात को छुपा भी नहीं रहा है कि इस समझौते से होने वाले आर्थिक लाभ का इस्तेमाल वह चरमपंथियों को हथियार दिलाने में करेगा। बिन्यामिन नेतन्याहू का ये बयान तब आया है जब अमरीकी रक्षा मंत्री एश्टन कार्टर मध्य पूर्व के दौरे पर जाने वाले हैं जिसमें वो इजराइल का भी दौरा करेंगे। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा का कार्यक्रम दिन भर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com की वेबसाइट पर लाइव। आपके साथ मैं अशोक कुमार। कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की, जिनके बीच सीमा पर फायरिंग के आरोपों और प्रत्यारोपों को लेकर फिर से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान ने कहा है कि सीमा पर यह फायरिंग दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच रूस के उफा में जो मुलाकात हुई, जो सहमति हुई, उसके बिल्कुल खिलाफ है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ की सरकार पहले ही उफा में जारी बयान को लेकर आलोचनाओं में घिरी है क्योंकि उसमें कश्मीर का जिक्र नहीं था। अब सीमा पर फायरिंग की घटनाओं को पाकिस्तान में कैसे देखा जा रहा है, यही जानने के लिए मैंने बात की इस्लामाबाद में वरिष्ठ पत्रकार एहतशामुल हक से।
देखिए, बुनियादी तौर पे तो जो ISCR और फौजी हजरात का नुक्ता नजर है वो तो यही है कि जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ा त्यौहार आता है जैसे ईद शबरात, تو اس طرح کے واقعات جو ہے نا وہ ہندوستان کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں، ورکنگ باؤنڈری پہ اور لائن آف کنٹرول پہ خلاف ورزیاں جو ہے نا وہ سیز فائر وائلیشن ہوتی ہے، تو اس کو روکنے کی ضرورت ہے اور یہ اوفا اسپرٹ جو ہے نا اس کے برخلاف ہے. اگر کہ اسی طرح کی چیزیں آپ دیکھنے کہ ہندوستان کی طرف سے بھی آ رہی ہیں کہ جی ہندوستان جو ہے نا وہ اس کا گلہ شکوا ہے کہ جی پاکستان کی فوج جو ہے نا وہ سیکورٹی اسی طرح کی وائلیشن کر رہی ہے، اوفا کے فوراً بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ چائنا اور رشیا کی لیڈرشپ وہ شاید ان کے لیے بھی یہ پریشانی کی بات ہوگی کہ وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ جی بات چیت ہونی چاہیے تو اس طرح کی وائلیشن رکنی چاہیے.
احتشام صاحب، جس طرح دونوں دیشوں کے پردھان منتری روس کے اوفا میں ملے اور اس کے ترنت بعد یہ سیما پر گولہ باری کا دونوں طرف سے جو الزام لگ رہا ہے، پھر سے رشتوں میں ایک طرح کا تناؤ آ گیا ہے، تو کیا اوفا کی ملاقات کو لے کر ابھی بھی کچھ آلوچنائیں جھیلنی پڑ رہی ہیں نواز شریف کو پاکستان میں؟ سرکار نے کچھ کہا ہے اس بارے میں؟
دیکھیے، سرکار کی طرف سے جو کل بیان تھا یا اس سے پہلے تھا اس سے تو یہی اسی طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی فوری طور پہ اوفا کے بعد توقع کی جا رہی تھی کہ اب یہ سیز فائر وائلیشن نہیں ہوگی، اور جبکہ بات چیت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے تو فوری طور پہ یہ فیسلٹیٹ ہندوستان کرے گا کہ بات چیت شروع ہو اور اس طرح کی وائلیشن نہ ہو. لیکن پھر یہ اس کو رپیٹ کیا گیا کہ جی ہندوستان کی قیادت جو ہے نا وہ کیوں سخت رویہ اختیار کرنا چاہتی ہے، کیا کنسیشن مزید لینا چاہتی ہے پاکستان سے، جبکہ پاکستان کی حکومت جو ہے نا وہ یہ کرٹیسزم بھی برداشت کر رہی ہے کہ جی جو جائنٹ کیمنے جاری ہوا تھا اس میں کشمیر کا ذکر نہیں تھا، ہندوستان کی بات کو آلموسٹ مانا گیا تھا کہ جی بمبئی دھماکے جو ہیں ان کو جو پرپریٹر کرنے والوں کو ذمہ داروں کو پکڑا جائے گا، کٹہرے میں لایا جائے گا، رینجرس اور ٹیررزم ہے جو دوسرا ٹیررزم ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جائے گی. اور یہاں پہ ملک کے اندر جو کرٹیسزم ہو رہا ہے حکومت سے، ستاجی صاحب نے آ کے بیان دیا تھا کہ نہیں اب کشمیر کی بات ہوئی تھی لیکن لوگ اس کو نہیں مان رہے، لکھنے والے بھی اخبارات اپنے ایڈیٹوریل میں کرٹیسائز حکومت کو کر رہے ہیں. اس تناظر میں بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو حکومت کی طرف سے یہ ایک بیان آنا اس طرح کا بھی ایک قسم کی فرسٹریشن بھی ہے کہ ہم نے بہت زیادہ کنسیڈ بھی کیا لیکن دوسری طرف سے ہندوستان کی طرف سے فوری طور پہ یہ وائلیشن شروع ہو گئی ہے ورکنگ باؤنڈری پہ اور لائن آف کنٹرول پہ، اس کو رکنا چاہیے.
یہ تھے اسلام آباد سے ورشٹھ پترکار احتشام الحق. ادھر بھارتی سینا نے بھی پاکستان کی سینا پر کل عید کے دن بھی نینترن ریکھا پر گولہ باری کرنے کا آروپ لگایا ہے، جس میں 5 لوگوں کے گھائل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. کس علاقے میں یہ فائرنگ ہوئی اور کب ہوئی، یہی میں نے پوچھا شری نگر میں بی بی سی سنواداتا ریاض مسرور سے.
ہاں جی دیکھیں، یہ تو پیر پنجال چھیتر ہے، حالانکہ وہاں پہ لائن آف کنٹرول کا بہت بڑا ایریا آتا ہے. اس میں تو 3 گاؤں ہیں جو سب سے زیادہ پربھاوت ہیں، اس میں شاہپور ہے، قاصبہ ہے اور گھونتری ہے، اور یہ بالکل لائن آف کنٹرول کے نکٹتم چھیتر ہیں جہاں پہ بہت زیادہ گولہ باری ہوئی ہے. پرسوں رات سے ایکچولی سینا کا کہنا ہے کہ رک رک کر فائرنگ ہو رہی تھی، اور کل دن میں جو ہے آر پی جی شیلز کو وہاں پہ دیکھا گیا ہے. اور سینا کا کہنا ہے کہ جو شاہپور، قاصبہ اور گھونتری گاؤں ہیں وہاں پہ لوگ عید کی گیدرنگز میں تھے اور وہ ایک کلچرل ایونٹ کر رہے تھے، جس کی وجہ سے کوئی 5 لوگ گھائل ہوئے ہیں جس میں 3 مہیلائیں بھی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو سینک ادھیکاری ہے ان کے وہ پروگرامز جو عید کے سلسلے میں ہوتے ہیں، یعنی بارڈر پہ کئی کانٹیکٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ عید یا کوئی ہندو فیسٹیول ہو یا دونوں دیشوں کے سوتنترا دیوس ہو، تو اس پہ مٹھائیاں بانٹنے کا ایک کلچر رہا ہے کئی برسوں سے. لیکن اس ورش دیکھا گیا کہ 18 سے 20 لوکیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں پاکستان اور ہندوستان کی سینا کے بیچ، لیکن اس بار صرف 5 یا 6 ایسے استھان ہیں جہاں پہ مٹھائیاں بانٹی گئی. لیکن 18 سے 20 لوکیشن میں سے صرف 5 استھانوں پہ مٹھائیاں بانٹی گئی، جسے لگتا ہے کہ سینک ادھیکاری جو ہیں ان میں کافی تناؤ ہے اور ایک وار پوزیشن میں ہیں دونوں طرف سے سینا ہے.
یہ تھے شری نگر سے بی بی سی سنواداتا ریاض مسرور، بتا رہے تھے کہ کس طرح ایل او سی یعنی نینترن ریکھا پر دونوں طرف سے فائرنگ جو ہو رہی ہے، جو اس کے آروپ لگ رہے ہیں ان کے چلتے دونوں دیشوں کے بیچ کس طرح تناؤ ہے. اور بات کرتے ہیں اب مدھیہ پردیش کے اجین کی، جہاں باڑھ کے حالات نے جیون کو است ویست کر دیا ہے. کچھ دنوں پہلے تک شہر کے لوگ بارش کے لیے دعائیں کر رہے تھے، لیکن اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بارش کی وجہ سے جیون دوبھر ہو گیا ہے. بھوپال سے پترکار شرینیازی کی رپورٹ.
مدھیہ پردیش میں پچھلے 2 دنوں سے جاری بارش نے جہاں پورے پردیش کو تر بتر کر دیا ہے، وہیں اجین شہر میں باڑھ کی استھتی بن گئی ہے. نچلے علاقے پوری طرح سے پانی میں سما گئے ہیں، और लगभग आधा शहर टापू में तब्दील हो चुका है। प्रशासन पूरी तरह से स्थिति पर नजर रखे हुए है। कलेक्टर कविंद्र कियावत ने बताया,
अभी तक की स्थिति में लगभग 350 मिलीमीटर के आसपास वर्षा हुई है और इस भीषण वर्षा से जनजीवन प्रभावित हुआ है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है। पानी निकासी की क्षमता से अधिक पानी का भराव होने के कारण सभी क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित हुआ है।
प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा बारिश उज्जैन में ही दर्ज की गई है। शहर में पिछले 24 घंटे में 11 इंच से ज्यादा बरसात हुई है। शिप्रा और गंभीर दोनों नदियां उफान पर हैं। स्थिति ये है कि शहर के कई मंदिरों में सिर्फ गुंबद ही दिखाई दे रहा है। कलेक्टर कविंद्र कियावत,
नगर निगम का अमला, जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन, सभी लोग मिलकर के इस समस्या से निपटने के लिए काम कर रहे हैं और जहां जहां से पानी की निकासी संभव है, जहां विद्युत व्यवस्था को रिस्टोर करने की जरूरत है, उन सब चीजों पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही राहत कैंप भी प्रारंभ कर दिए गए हैं जहाँ पर प्रभावित लोगों को शिफ्ट करके और वहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था और उनको वर्षा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, यह सुनिश्चित किया जा रहा है।
शहर की सड़कों के साथ ही रेल की पटरियां भी पानी में डूब गई हैं, जिसकी वजह से इंदौर, भोपाल और रतलाम रेल लाइन की गाड़ियां प्रभावित हुई हैं। जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेज में छुट्टी घोषित कर दी है। उज्जैन के साथ ही इंदौर, सीहोर, होशंगाबाद और शाजापुर में भी भारी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि इस तरह की बारिश मंगलवार तक जारी रह सकती है। प्रदेश में अब तक न के बराबर बारिश हुई थी, इसी के चलते कई शहरों में बारिश के लिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई थीं, लेकिन दो दिनों के अंदर स्थिति उलट हो गई है। लगातार हो रही बरसात लोगों के लिए आफत बन गई है।
मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त कई शहरों में, बता रहे थे शुरय न्याजी। रेलवे ने कहा है कि तत्काल टिकट बुक करना अब आसान हो जाएगा। सरकार ने इसके लिए कई कदमों की घोषणा की है। क्या कुछ हैं उपाय, चलिए जानते हैं अनुराग शर्मा से जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। क्या कुछ उपाय, कैसे आसान हो जाएगा तत्काल टिकट बुक करना? अनुराग,
अब देखिए अशोक जी, अब तक टिकट खिड़की से ये होता था कि तत्काल टिकट अगर आप बुक कर रहे हैं तो आपको अपने पहचान पत्र की फोटोकॉपी देनी पड़ती थी, और अगर आप इंटरनेट से टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको पहचान पत्र के बारे में बताना होता था और उस पहचान पत्र का नंबर भी बताना होता था कि मसलन कि पैन कार्ड आप अगर यूज़ कर रहे हो तो आप उस पैन कार्ड का नंबर क्या है, वोटर आई डी कार्ड है तो उसका नंबर क्या है। साथ ही एक और ज़रूरत ये थी कि यात्रा के समय यही पहचान पत्र आपको अपने साथ रखना ज़रूरी होता था, लेकिन अब बुकिंग के समय पहचान पत्र दिखाने या उसके बारे में बताने की ज़रूरत खत्म कर दी गई है, यानी कि अब आपको फोटोकॉपी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। अब किसी भी यात्री के लिए कोई भी एक मान्य पहचान पत्र यात्रा में साथ रखना काफ़ी होगा। रेलवे ने इसकी वजह भी बताई कि इन नियमों में बदलाव क्यों किया गया है। असल में कई जनप्रतिनिधियों के जरिए और कई उपभोक्ताओं के जरिए रेलवे के पास ये शिकायत पहुंची थी कि ये नियम जो हैं ये असल में टिकट बुक करने को ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो रेलवे का कहना है कि ये संभव है कि कोई व्यक्ति अपने बुजुर्ग माता पिता या बच्चों के लिए टिकट बुक कर रहा हो जो किसी अन्य शहर में रह रहे हों और उनके पहचान पत्र की फोटोकॉपी उपलब्ध ना हो, तो ऐसे हालत में काउंटर पर वो मुहैया कराना उनके लिए संभव नहीं होता,
तो इस परेशानी को दूर करने की कोशिश की गई।
इसके अलावा एक और बात यह है कि अगर आप इंटरनेट पर टिकट बुक कर रहे हैं तो पहचान पत्र का नंबर देने से एक तो ट्रांजैक्शन का समय बढ़ता है, जबकि एजेंट जो है, रेलवे का ऐसा कहना है कि एजेंट जो है वो स्क्रिप्टिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि आप इससे डिसएडवांटेज पे आ जाते हैं। और पहचान पत्र का नंबर अगर गलत भर दिया तो टीटी आपको बगैर टिकट मान लेगा, यानी आपको पेनल्टी चुकानी होगी। ये तमाम वजहें रेलवे ने गिनाई है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का कहना है कि इससे दलालों को बढ़ावा मिलेगा इन कदमों से।
चलिए देखते हैं क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूं विश्वास में,
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा। पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
तो आज रविवार भी है और कार्यक्रम दिन भर भी है और अब बारी है इसी श्रृंखला में दूसरी कड़ी सुनने की। लंदन किंग्स कॉलेज के प्रोफेसर सुनील खिलनानी जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी के जीवन और उनकी विरासत पर नजर दौड़ा रहे हैं आज की कड़ी में। महावीर स्वामी दुनिया भर में जैन अनुयायियों के प्रेरणा स्रोत हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं मोहनलाल शर्मा।
पुरानी दिल्ली, लाल किले के सामने की सड़क पर नेकर पहनकर एक छोटा सा बच्चा अस्पताल से बाहर निकल रहा है। उसकी कांख में सुंदर लाल कलगी वाला एक काला मुर्गा है। मुर्गे के सिर पर पट्टियां बंधी हैं।
क्या कर रहा है इसके साथ?
मैं हॉस्पिटल ले गया था।
इसको हॉस्पिटल लिया?
हाँ, यहाँ टाके लगे, कुछ डॉगी ने काट लिया। उन्होंने टाके लगाए।
ये अस्पताल दिल्ली के बीमार इंसानों के लिए नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ पंछियों का इलाज होता है। अंदर 400 पिंजड़े हैं जिनको ठंडा रखने के लिए पंखे चलते रहते हैं। बीमार पंछियों को दवाइयां और तरल प्रोटीन भी दिया जाता है। चांदनी चौक पक्षी चिकित्सालय एक अजूबा सा लगता है, लेकिन तभी तक जब तक आप ये नहीं जानते कि यह अस्पताल दिगंबर जैन मंदिर के परिसर में है। भारत के महान धर्मों में से एक जैन धर्म के तकरीबन 50 लाख अनुयायियों की आस्था का एक बुनियादी सिद्धांत है पशु पक्षियों की देखभाल। जैन धर्म का ये मूल विश्वास है कि जिस धरा पर हम रहते हैं और जिस हवा में हम सांस लेते हैं, सब में जीवन है। संपूर्ण जगत जीवमय है, इसलिए हमारा दायित्व है कि हम अहिंसा के माध्यम से जीवात्माओं से भरे पूरे इस ब्रह्मांड की रक्षा करें। डॉक्टर सुनील ने इस अस्पताल में कई सालों तक काम किया है।
इस समय हमारे अस्पताल में करीब 4,500 पक्षी हैं। यह अस्पताल दुनिया में अपनी तरह का अनूठा अस्पताल है, क्योंकि यह सिर्फ दान से चलता है और 99% दान जैन समुदाय से मिलता है।
सच पूछिए तो हिंदू धर्म की तरह ही जैन धर्म का भी कोई संस्थापक नहीं है। जैन धर्म 24 तीर्थंकरों के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित है। तीर्थंकर यानी वो आत्माएं जो मानवीय पीड़ा और हिंसा से भरे इस सांसारिक जीवन को पार कर आध्यात्मिक मुक्ति के क्षेत्र में पहुंच गई हों। सभी जैनियों के लिए 24वें तीर्थंकर महावीर जैन का खास महत्व है। महावीर इन आध्यात्मिक तपस्वियों में से अंतिम तीर्थंकर थे, लेकिन जहां औरों की ऐतिहासिकता अनिश्चित है, वहीं महावीर जैन के बारे में पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया। अहिंसा के इस उपदेशक का जन्म क्षत्रिय जाति में हुआ। वो गौतम बुद्ध के समकालीन थे। दिलचस्प बात यह है कि महावीर भी उसी मगध क्षेत्र यानी कि आज के बिहार के थे जहाँ के गौतम बुद्ध थे। जरूर इसमें नियति का कोई खेल रहा होगा।
ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सिद्धानम।
गौतम बुद्ध और महावीर दोनों ही ब्राह्मणों द्वारा प्रचारित उस युग के वैदिक विश्वासों के आधिपत्य के खिलाफ उठे आंदोलनों के सबसे करिश्माई प्रवक्ता थे। महावीर के अनुयायियों ने पुनर्जन्म के सिद्धांत जैसे कुछ वैदिक विश्वासों को तो अपनाया, लेकिन गौतम बुद्ध की तरह जाति बंधनों, देवताओं की सर्वोच्चता में विश्वास और पशु बलि की प्रथाओं से किनारा कर लिया। महावीर के अनुयायियों के लिए मुक्ति का मार्ग त्याग और बलिदान ही है, लेकिन इसमें जीवात्माओं की बलि शामिल नहीं। पॉल ड्यूंडास एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में जैन धर्म का अध्ययन कर रहे हैं।
All forms of existence, according to Jainism, are embodied souls.
जैन धर्म के अनुसार जिस भी चीज का अस्तित्व है उसमें आत्मा है, उसे जीवा कहा गया है, जिसका अर्थ है जीवनी शक्ति। यह विश्व जीवों से भरा है, ऐसे जीवों से भी जो प्राय दिखाई नहीं देते। यहाँ सवाल केवल मनुष्यों और पशुओं का ही नहीं है, बल्कि इसमें पौधे, कीट पतंगे और यहाँ तक कि पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि में मौजूद जीवात्माएं भी शामिल हैं। और इस जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण यह है कि हम अपने आचार व्यवहार को इस तरह नियंत्रित और अनुशासित करें कि हमसे जानते बूझते या अनजाने में जीवात्माओं को कम से कम क्षति पहुंचे।
कुछ बौद्ध ग्रंथों में महावीर का उल्लेख है, लेकिन आज हम उनके बारे में जो कुछ भी जानते हैं उसका आधार दो जैन ग्रंथ हैं। प्रचारात्मक कल्पसूत्र महावीर के सदियों बाद लिखा गया और इससे पूर्व लिखे गए आचारांग सूत्र हैं। इस ग्रंथ में महावीर को भ्रमणरत, नग्न, एकाकी साधु के रूप में दर्शाया गया है। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में कई जैन पांडुलिपियां रखी हैं, जहां जैन अनुयायी डॉक्टर मेहुल संगराजका इस संग्रह को व्यवस्थित करने में मदद कर रहे हैं।
कई विद्वानों का मानना है कि इस आचारंग सूत्र ग्रंथ के कई शब्द स्वयं महावीर द्वारा कहे गए शब्द हैं। इसके बारे में दूसरी रोचक बात यह है कि यह महावीर की पहली जीवनी है जो बाद में लिखी गई उनकी जीवनियों से बहुत अलग है। ग्रंथ के अंत में एक जीवनी है जिसमें महावीर स्वयं अपनी कठिनाइयों की बात करते हैं कि जो लोग उन्हें और उनकी शिक्षाओं को समझ नहीं पाए उन्होंने उन पर पत्थर फेंके, छड़ियों से पीटा, जैसे वे कहना चाहते हों कि वे जिस तरह के जीवन का उपदेश दे रहे हैं वह आसान नहीं है, भव्य भी नहीं, लेकिन अंतिम परिणाम सुखद है।
कहा जाता है कि महावीर ने 30 वर्ष की आयु में भ्रमण करना प्रारंभ किया और वो 42 वर्ष तक यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे। गौतम बुद्ध की तरह महावीर ने किसी मध्यम मार्ग का उपदेश नहीं दिया। महावीर ने अपने अनुयायियों को असत्य और मैथुन त्यागने, लालच और सांसारिक वस्तुओं का मोह छोड़ने व हर प्रकार की हत्याएं व हिंसा बंद करने का संदेश दिया। ज्ञान की खोज में गृह त्याग कर महावीर ने अपनी यात्रा की शुरुआत भी एक भयानक पीड़ाजनक कृत्य से की। कल्पसूत्र में अशोक वृक्ष के नीचे घटित उस क्षण का वर्णन है।
वहां उन्होंने अपने अलंकार, मालाएं और सुंदर वस्त्रों को त्याग दिया। आकाश में चंद्रमा और ग्रह नक्षत्रों के शुभ संयोजन की बेला में उन्होंने 2.5 दिन के निर्जल उपवास के बाद दिव्य वस्त्र धारण किए। वे बिल्कुल एकाकी थे, कोई उनके साथ नहीं था। अपने केश लुंचित कर और अपना घर बार छोड़कर वे सन्यासी हो गए।
उनके शिष्य बौद्धों की तरह अपना सिर मुंडवाकर ही संतुष्ट नहीं होते, बल्कि वो अपने मुट्ठियों से केश लुंचन करते हैं। महावीर और जैन परंपरा की शिक्षाएं 20वीं सदी के भारत में तब राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो गईं, जब महात्मा गांधी ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य ब्रिटिश राज को हटाने के लिए अहिंसा का प्रयोग किया और गांधी जी जैन धर्म की सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान की भावना का बेहद आदर करते थे। अहिंसा का उनका दर्शन लियो टॉलस्टॉय सहित कई स्रोतों से प्रभावित था, लेकिन महावीर उन्हें अहिंसा के सिपाही लगते थे। कठिनाइयों से जूझता एक कर्मठ वीर, ड्यूंडास कहते हैं।
महावीरस नेम लिटरली मींस द ग्रेट हीरो।
महावीर के नाम का शाब्दिक अर्थ है महान वीर या नायक। मेरा मानना है कि आज की दुनिया में हम में से कई तब को नकारात्मक मानते हैं, उपवास वगैरह रखने को शारीरिक कष्ट और पीड़ा के ऐसे रूप मानते हैं जो धार्मिक लोग हमेशा से खुद को देते रहे हैं, लेकिन भारत में इसे नकारात्मक नहीं माना जाता, बल्कि बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बहुत साहस का कार्य समझा जाता है।
महावीर के पवित्र उपदेश संपूर्ण भारत में फैले, विशेषकर पश्चिमी भारत के गुजरात और राजस्थान में तथा दक्षिण भारत में कईयों ने जैन धर्म अपनाया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में आपको सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ मिलेगा, एक विशालकाय प्रतिमा जो एक पर्वत की चोटी को काट कर गढ़ी गई है, बाहुबली चोटी।
It's a long barefoot climb, up steps.
यहां तक पहुंचने के लिए मैंने नंगे पैर सीढ़ियों से लंबी चढ़ाई चढ़ी है, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। ज्यादातर जैन मंदिर मजबूत चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं और बेहद दूर दराज के इलाकों में हैं। यहाँ से झांकने पर दिखाई पड़ता है उत्तरी कर्नाटक का अद्भुत दृश्य। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली या गोम्मट पहले तीर्थंकर के पुत्र थे। 17 मीटर ऊंची और 8 मीटर चौड़ी ये प्रतिमा एक चट्टान से बनी विश्व की सबसे विशाल मानव प्रतिमा है।
It's a muscular figure of great stillness. In fact, so still.
बाहुबली प्रतिमा। ये बलिष्ठ प्रतिमा स्थित प्रज्ञ गोमट की है। माना जाता है कि गोमट या बाहुबली इतने निश्चल भाव से समाधि में खड़े थे कि आसपास की लताएं उन पर चढ़ती रहीं, उनके अंगों से लिपटकर बढ़ती रहीं। मैं उनके नग्न शरीर पर उन लताओं के टेढ़े मेढ़े आकार को भी देख पा रहा हूँ। जैन प्रतिमाओं का सहज रूप तप की अंतिम अवस्था को दर्शाता है। कठोर जैन निरामिष भोजन में न केवल मांस व अंडों का सेवन निषेध है, बल्कि कंद मूल भी वर्जित है। शायद इसलिए कि उन्हें उखाड़ने से जमीन के अंदर व आसपास के पौधों और छोटे जीव जंतुओं को कष्ट पहुंच सकता है। दिल्ली के दिगंबर जैन मंदिर में महिलाएं पूजा कर रही हैं। जैन समुदाय में इस बात पर मतभेद है कि महिलाएं ज्ञान व मुक्ति के मार्ग पर चल सकती हैं या नहीं। एक जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर स्त्रियों को विश्व का सबसे बड़ा प्रलोभन मानते थे और कठोरतम जैन परंपराओं के मुताबिक स्त्रियां सन्यासी नहीं हो सकती, क्योंकि उनके शरीर में अंडाणुओं का निर्माण होता है जो कि मासिक धर्म के श्राव के वक्त मारे जाते हैं। पॉल ड्यूंडास कहते हैं,
Jain scriptural tradition is full of references to
इस समुदाय को दिगंबर कहते हैं, यानी दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं। दिगंबर नग्न रहते हैं। दिगंबर जैनियों का दावा है कि केवल नग्न साधु ही ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और चूंकि स्त्रियों को नग्न रहने की मनाही है, इसीलिए वे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती।
महावीर के समय में ही इन कठोर जैन आचारों का पालन कठिन था, और आधुनिक भारत में तो ये और भी कठिन है। असल में कठिन मार्ग के कारण ही ये धर्म भारत से बाहर उस तरह से नहीं फैल पाया जैसे कि बौद्ध धर्म। आज दिगंबर साधु कभी कभार चार लेन वाले राजमार्गों पर चलते दिखाई दे जाते हैं। जैन समुदाय आज अपनी व्यवहारिक कुशलता और व्यावसायिक नैतिकता के लिए जाना जाता है, और इन्हीं गुणों के कारण आज वो देश के सबसे धनी अल्पसंख्यक समुदाय में से एक हैं। 21वीं सदी में भारतीय संभ्रांत परिवार की चकाचौंध और दिखावे भरी जीवन शैली की तुलना में जैन अनुयायी इस समृद्धि का प्रदर्शन ना के बराबर करते हैं। जैनियों में परोपकार की सशक्त परंपरा है, जिसका केंद्र प्रायः पशु पक्षी होते हैं। इसी परंपरा और परोपकार की भावना के कारण आज दिल्ली पक्षी चिकित्सालय की वित्तीय हालत गरीबों के लिए बने सरकारी अस्पतालों से बेहतर है। शनिवार की सुबह बच्चे पक्षी चिकित्सालय में स्वस्थ हो चुके कबूतरों, गौरैयों, कौओं और चीलों को छत पर लाने में मदद करते हैं, जहां पंछी अपने पंख फड़फड़ाते हैं और फिर से आसमान की ऊंचाइयां नापने लगते हैं।
ओम नमो अरिहंतानम।
कैसी लगी आपको ये कड़ी, जरूर हमें लिख भेजिएगा। और बात थोड़ी सी खेल की, जिम्बाब्वे ने भारत को T20 मुकाबले में 10 रन से हरा दिया है। आदेश जी हमारे साथ हैं, कैसा रहा मैच?
जी देखिए, ये भारत का जिम्बाब्वे में आखिरी मुकाबला था। इसी के साथ भारत ने जिम्बाब्वे द्वारा 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज जो 3-0 से अपने नाम की उसने, लेकिन 2 मैचों का जो 2020 मुकाबला था उसमें आज दूसरे और आखिरी मुकाबले में भारत 10 रन से पराजित हो गया। जैसा आपने बताया, आज जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 145 रन बनाए, और थोड़ी देर पहले भारत के 9 विकेट 135 रन पर गिरे, यानी भारत निर्धारित 20 ओवर में 135 रन ही बना सका। तो इस तरह से जिम्बाब्वे ने एक राहत की सांस जरूर ली होगी जिस तरह से इस 2020 सीरीज को उसने बराबरी पर समाप्त किया।
जी, कुल मिलाकर भारत का जिम्बाब्वे दौरा खत्म, लेकिन हार के साथ खत्म
जी।
लेकिन उससे पहले कई मैच, सारे लगभग मैच भारत ने जीते। तो कार्यक्रम के अंत में अब चलने से पहले मुख्य समाचार।
पाकिस्तान ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना ने शनिवार को LOC पर बगैर उकसावे की फायरिंग करके उफा समझौते का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान सेना ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से नेजा पीर सेक्टर में फायरिंग की गई। वहीं भारतीय सेना ने भी ईद के मौके पर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होने के आरोप लगाए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर ईरान के परमाणु समझौते पर निंदा की है। उन्होंने कहा है कि ईरान समझौते से होने वाले आर्थिक लाभ का इस्तेमाल चरमपंथियों को हथियार दिलाने में करेगा। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन की सेना और रूस समर्थित विद्रोहियों के बीच तनाव बढ़ गया है। संघर्ष विराम की निगरानी करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संस्था OSCE ने इस बात की पुष्टि की है। अल्जीरिया की सेना ने कहा है कि एन डेफला प्रांत में एक चरमपंथी हमले में 9 सैनिकों की मौत हो गई है। BBC समाचार।
तो इसी के साथ दिन भर का समय समाप्त होने को, आपसे अगली मुलाकात 1.5 घंटे बाद होगी घटना चक्र में। तो नमस्कार।